हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 381। अगली सुबह अक्षत का बंगला। नैना की आंख वहीं अक्षत के लिविंग एरिया के सोफे पर ही खुली, क्योंकि कल अक्षत का नंबर डायल करते करते, उसका इंतजार करते हुए वो वहां पर सोफा ही बैठी रही थी, और फिर थक हार कर वहां पर बैठी हुई उसके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो कल रात वापस नहीं, तो नैना वहीं पर सो गई। अगली सुबह करीब 8 बजे उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा कि एक सफाई करने वाली मेड अपना काम कर रही थी, और तभी कुछ आवाज हुई जिसकी वजह से नैना की आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर उसके और नौकरों के अलावा और घर के किसी भी मेंबर का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात समझ आते ही नैना ने अपने आप से कहा, कहां हो तुम अक्षत? क्या सच में मैंने तुम्हें इतना ज्यादा नाराज कर दिया कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? ये बात अपने आप में बोलती हुई नैना बहुत ही दुखी लग रही है, और कल रात को भी वो लगभग रुआंसी होकर ही सोई थी। इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो इधर उधर देखने लगी, और तभी उसे अपना मोबाइल फोन वहीं नीचे जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने जल्दी से मोबाइल फोन उठाया और उसे ऑन करने लगी, लेकिन उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ। तो रात नैना ने इरिटेट होते हुए कहा, अब ये मोबाइल फोन को क्या हो गया? इतना बोलते हुए वो बार बार मोबाइल का बटन प्रेस कर रही है। तभी उसे याद आया कि कल सुबह से ही उसने अपना मोबाइल चार्ज ही नहीं किया है एक बार भी। मोबाइल फोन को डेड देखकर नैना ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर अपने आप से बोली, मैंने तो मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं किया, शिट, पहले इसे चार्ज पर लगा देती हूँ। इतना बोलते हुए नैना वहां सोफा पर से उठी और फिर उसने अपने हुलिये पर एक नजर डाली। उसने कल रात कपड़े भी चेंज नहीं किए और वो अब तक उन्हीं कपड़ों में है जो कि उसने सुनैना के घर जाते वक्त पहने हुए थे। उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। वो अक्षत को लेकर इतनी ज्यादा परेशान थी और उसे लगा कि विवान को शायद इस बारे में कुछ पता होगा, और वो घर पर होगा तो वो उससे ही इस बारे में पूछ लेगी। लेकिन विवान भी अभी तक घर पर नहीं आया है, इसीलिए नैना सबसे पहले अपने रूम में गई। उसने पहले तो अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया और फिर कपड़े चेंज करने के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ ही बढ़ गई। दूसरी तरफ अनय का घर। अनय की सुबह नींद खुली तो उसने अपने बेड पर इधर उधर हाथ फिराया और ऐसा लगा जैसे कि वो नींद में अपने साइड में किसी को ढूंढ रहा है। और ये सच भी था, वो मनस्वी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे उसके साथ ही रहने और सोने की आदत सी हो गई थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि पिछली रात तो वो यहां पर अकेले ही सोया हुआ था और उसके आसपास कोई भी नहीं है। ये बात समझ में आते ही उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी और उसने अपने आंख खोलते हुए साइड में देखा। अनय काफी डिसअपॉइंटेड होकर बेड से उठते हुए बोला, नहीं है वो यहां पर। क्यों तू बार बार उसके बारे में ही सोच रहा है? रात को सोने से पहले भी वही छाई हुई थी तेरे दिमाग में, और अभी सुबह भी, जबकि उसे तेरी कोई फिक्र नहीं है, ना कभी थी और ना ही कभी होगी। इतना बोलते हुए अनय ने एक गहरी सांस ली और अपने बेड से उठ गया। कुछ ही देर में अपनी जगह से उठकर वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा। इस बीच उसका मन हुआ कि एक बार जाकर मनस्वी के कमरे में झांक कर उसे देख या फिर उससे कुछ हालचाल ही पूछ ले कि आज वो होटल ऑफिस जाएगी या नहीं। इस बहाने से ही कुछ दोस्त से बात कर ले। ये सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकला और उसके कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर पता नहीं कुछ सोचते हुए रुक गया और वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़कर वो नीचे ही उतर आया। उसे पता नहीं था कि मनस्वी अपने रूम में है भी या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसका सामना नहीं करना चाहता। वो उससे मिलना तो चाहता है, उसके साथ होना तो चाहता है, लेकिन पूरी तरह से वो खुद को और अपने सिचुएशन फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और अपनी शर्ट की आस्तीन के बटन बंद करते हुए अनय अपनी सोच में डूबा हुआ सीढ़ियां उतर रहा है, और मनस्वी वहां पर हॉल में बैठी हुई अपनी कॉफी पी रही है। सीढ़ियों की तरफ से किसी के कदमों की आहट आते हुए मनस्वी ने उस तरफ देखा तो उसकी नजर सामने से सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हुए अनय पर पड़ी, जो कि उस व्हाइट फॉर्मल शर्ट और नॉर्मल जीन्स में भी काफी ज्यादा हॉट लग रहा है, और वो उसे इस तरह से कम ही नोटिस करती है। लेकिन आज जब उसने उसे ऐसे लुक में सामने देखा तो उसकी नजरें ही अनय पर से नहीं हटी। वो अपनी कॉफी पीते पीते रुक गई और बिना अपनी पलके झपकाए एकटक उसकी तरफ ही देखने लगी। अनय ने नीचे उतरते हुए जब उस पर ध्यान दिया तो उसकी चाल थोड़ी सी धीमी हो गई और वो दूसरी तरफ जाने के बजाय सीधा मनस्वी की तरफ ही पहुंचा, लेकिन उससे थोड़ी दूर थोड़ा सा पहले ही रुक गया और बोला, तुम यहां पर ऐसे क्यों खड़ी हो? कहां खोई हुई हो? मेरा मतलब तुम ठीक हो ना? अनय ने मनस्वी के थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए ये सवाल किया। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही मनस्वी भी जैसे होश में आई
जो कि एकदम खोई हुई सी उसकी तरफ ही देख रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि कब सीढ़ियां उतरकर वो उसके एकदम सामने आ गया। और जैसे ही अनय ने ये बोला, मनस्वी ने पूरी तरह से अनजान बनते हुए अपनी कॉफी की एक सिप ली और बोली, हाँ कुछ कहा क्या तुमने? उसने सच में अनय की बात पूरी नहीं सुनी थी, इसीलिए उसने ये सवाल किया। लेकिन उसे इस तरह से हड़बड़ाते देख अनय ने कहा, अरे आराम से कॉफी पियो तुम, मैं बस ये पूछ रहा था कि कल तुम वो इतने दिनों के बाद वो अपने रूम में वापस। इतना बोलते हुए अनय फिर से इधर उधर देख रहा है, क्योंकि ये सवाल पूछते हुए वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा है। जबकि मनस्वी समझ गई कि वो उससे उसके रूम में रहने के बारे में पूछने वाला है, और वो चाहती भी है कि अनय ये सवाल करे जिससे कि वो जवाब में अपना गुस्सा उस पर निकाल पाए, क्योंकि उसकी वजह से ही वो वहां पर नहीं गई। और वो भले ही नहीं गई, लेकिन रात में वो उसे बुलाने तो दूर उसका हालचाल पूछने तक नहीं आया। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा दिखाने के बदले चुप रहने का रास्ता चुना लड़ने के बजाय, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली। लेकिन अभी जैसे ही उसने अनय को इस तरह से रेडी होकर सीढ़ियां उतरते देखा, वो जैसे उसमें खोसी गई और उसे इस तरह अपने सामने देखकर वो अपना गुस्सा जो उसके लिए अभी तक उसके मन में था उसे भी पूरा भूल चुकी थी। अभी कुछ मिनट पहले तक वो एकदम किसी दीवाने पागल इंसान की तरह घूरकर उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज से वो होश में आई और बोली, क्या मेरा रूम? क्या कहना क्या चाहते हो? सेट क्लियरली बोलो। मनस्वी ने इस तरह से सवाल किया तो अनय इस बार थोड़ा सा सोचते हुए बोला, अरे नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम आज भी ऑफिस नहीं आओगी क्या? तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है क्या? कोई जरूरी काम भी नहीं? अनय ने भी तुरंत उसी तरह से पूछने पर बात बदल दी। अनय ने जैसे ही अपना सवाल बदल दिया, मनस्वी बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील करने लगी और उसने कहा, मैं जाऊं या ना जाऊं तुम्हें क्या करना? तुम कभी बताते हो क्या मुझसे? मैंने तुमसे जब भी पूछा उल्टा ही जवाब देते हो मुझे, और मुझसे आकर ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि। गुस्से में मनस्वी के मुंह में जो भी आया वो सब कुछ बोलती गई।
लेकिन तभी अनय उसकी बात पूरी करते हुए बोला, जैसे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यही कहना चाहती थी ना? लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और इतना तुम्हें पूछ ही सकता हूँ। इतने दिनों में अनय ने आज पहली बार ही हक जताते हुए ये बात कही है। इससे पहले तो हमेशा बस मनस्वी दूसरों के सामने उसे डिफेंड करने के लिए ही ये बात बोलती आई है। वो ये बात सुनता तो था ही, और कहीं ना कहीं उसे सुनकर अच्छा भी लगता था। लेकिन इस बात में ना तो कभी उसने मनस्वी का साथ दिया और ना ही कभी उसके खिलाफ गया। लेकिन जब आज ये बात उसने बोली तो मनस्वी उसकी आंखों में नहीं देख पाई और इधर उधर देखकर उससे नजरें चुराती हुई बोली, हाँ हस्बैंड हो, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ मुझे याद नहीं है। लेकिन इतना याद है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। हम दोनों का रिश्ता भी बस नाम का, और ये शादी भी एक डील की तरह ही हुई थी ना? मनस्वी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अनय ने आगे आकर कसकर उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देते हुए थोड़े गुस्से से बोला, क्यों वो पुरानी बातें क्यों बीच में ला रही हो? हमारी बात हो चुकी है ना इस बारे में, तो फिर क्यों क्यों तुम फिर से सब कुछ वहीं पर ले जा रही हो जहां से सब शुरू हुआ था? आखिर क्या चाहती हो तुम? उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही मजबूती और हक से अनय ने ये सवाल किया तो मनस्वी भी नज़र उठाकर अपनी गुस्से और दर्द भरी लाल आंखें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या चाहती हूँ? सच में मैं क्या चाहती हूँ? ये कभी मैटर करता भी है तुम्हारे लिए जो मुझसे ये पूछ रहे हो? और मेरी छोड़ो, लेकिन मुझे ये बता दो कि तुम क्या चाहते हो? अनय का ये सवाल सुनकर वो बहुत ही कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा। अनय को इस तरह कन्फ्यूज होकर अपनी तरफ देखते हुए पाकर मनस्वी हल्के से हंसते हुए बोली, ओ सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। शायद मुझे पता है तुम क्या चाहते हो इस बारे में तो नहीं, लेकिन क्या नहीं चाहते हो, और वो हूँ मैं। सबसे ज़्यादा अनवांटेड पर्सन हूँ ना मैं तुम्हारी लाइफ में, जो बस ज़बरदस्ती ही किसी बेशर्म की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, जबकि तुमने कभी भी हमारे रिश्ते को नहीं अपनाया और शायद तुम कभी अपना भी नहीं पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं अनय, इट्स फाइन। मनस्वी बहुत ही इमोशनल होकर ये सब कुछ बोल रही है और उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराज़गी दोनों एक साथ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में नज़र आ रहा गुस्सा अब दुख और तकलीफ के आंसुओं में बदल गया है। मनस्वी को इस तरह से देखकर भी अनय को समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा कुछ भी कब बोला। मनस्वी ने इतना बोलते हुए अपने कंधे पर से अनय का हाथ झटककर हटा दिया और अपनी जगह से पीछे होते हुए बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ मत बोला करो रोज़ रोज़ ये बात। मुझे हर्ट होता है अनय, बट तुम कभी भी नहीं समझोगे। तुम्हारे हिसाब से तो मैं इंसान नहीं, पत्थर हूं ना? क्रमशः